أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک سورہ فاتحہ رات تلاوت کریں ان شہید کی روح کے لیے جنہیں عراق میں مظلومیت کے ساتھ شہید کیا گیا، اور تمام ان افراد کی ارواح کے لیے جو ان کے ساتھ شہید ہوئے، اور تمام وہ افراد کے جو اسلام کی راہ میں اب تک مقام شہادت پر فائز ہوئے ہیں، آیت اللہ سید محمد باقر الحکیم ان کے رفقا اور تمام شہداء اسلام کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے گا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه محمد.
ماہ رجب کی مناسبت سے اور اس تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے کہ جو ہم نے پچھلے مہینے آغاز کیا تھا ائمہ اتھار علیہ السلام اور تاریخ اسلام کی ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت اور تاریخ اسلام کے تسلسل کے جائزے میں، کہ جس میں ہم نے چوتھے امام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیا تھا کہ جو 61 ہجرہ سے لے کر 95 ہجرہ تک محیط تھی، اس 35 سال 34 سال کا ہم نے جائزہ دیا، اور اس میں جو سیاسی تبدیلیاں آئیں ان کی طرف بھی اشارہ ہوا، اور ائمہ اتھار علیہ السلام کی طرف سے جو رد عمل تھا اس کی طرف بھی اشارہ ہوا. اب آج کے پہلے دن کو ہم نے عنوان دیا ہے ائمہ اتھار علیہ السلام کی جہد مسلسل، ایک مسلسل جد و جہد جو وہ انجام دے رہے تھے. ایک مشکل جو ہم لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے وہ ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت میں اس تسلسل کو نہ سمجھنے سے پیش آتی ہے. اگر آپ ائمہ اتھار علیہ السلام کی حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو یہ 250 سال کا زمانہ ہے، اور اس 250 سال میں بہت ساری ایسی تبدیلیاں ہیں جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. جب ہم لوگ ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس تبدیلیوں سے غافل ہو جاتے ہیں کہ جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہو کہ جو 60 سال کسی ایک سیاسی میدان میں زندگی گزارے، کسی کی عمر مثال کے طور پر 100 برس ہو، 90 برس ہو، 30 سال میں وہ سیاسی مقام پر پہنچ جائے، اور اس کے بعد 60 سال یا 50 سال کسی قوم کی سیاسی رہبری کے عمل کو انجام دے، تو کیا 50-60 سال میں ہمیشہ ایک ہی قسم کی پالیسی اختیار کرے گا؟ یعنی کہ نہیں، اس کے اصول معین ہوں گے، پالیسی کے اصول معین ہوں گے، اور اس کے اصولوں کے تحت اس کی سیاست کے خد و خال تبدیل ہوتے رہیں گے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن حالات میں وہ زندگی گزار رہا ہے. ہم لوگ جب ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں تو معمولاً ان تبدیلیوں سے غفلت کر دیتے ہیں کہ جو ان کے اطراف میں پیش آ رہی تھیں. اب اگر ائمہ اتھار علیہ السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو 11 سنہ ہجرہ سے اس سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے، یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی وفات کے بعد سے 11 سنہ ہجرہ سے آغاز ہوا، اور 260 سنہ ہجرہ تک ائمہ اتھار علیہ السلام کی ظاہری زندگی ہے اس دنیا کے اوپر. اب اس 260 سال کو ہم کیسے جائزہ لیں؟ معمولاً ہمارا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو امام علی نے کیا بے عینہ ہی وہی امام حسن نے کرنا ہے، جو امام حسن نے کیا بے عینہ ہی وہی امام حسین نے کرنا ہے. جب ہم اس جملے کو اپنے ذہن میں سوچ لیتے ہیں تو پھر تعارض ہمیں نظر آنے لگتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کسی امام نے جنگ کی اور کسی امام نے صلح کی، بلکہ شاید تعارض پھر ایک امام کی زندگی میں بھی نظر آئے. ظاہری تعارض کہ ہم سوچیں کہ امیر المومنین نے 25 سال صبر کیا، اور وہ جو 4-4.5 سال خلافت ظاہریہ کے اوپر فائز ہوئے اس میں 3 جنگیں لڑ لی، تو اگر جنگیں ہی لڑنا تھی تو انہوں نے پہلے دن سے کیوں نہیں لڑ دی کہ نبی اکرم کی وفات کے بعد جنگوں کا آغاز کر لیتے، یہاں تک کہ انہوں نے 36 ہجرہ کے بعد جا کر 3 جنگیں لڑی. تو یہ طریقہ ہی صحیح طریقہ نہیں ہے. ہمیں ائمہ اتھار علیہ السلام کی حیات طیبہ کو سمجھنے میں اس 250 سال کے اندر رہتے ہوئے کچھ اصول تیار کرنے ہوں گے، کچھ اصول تلاش کرنے ہوں گے کہ ہم یہ سوچیں گے کہ انہوں نے ان اصولوں کی خاطر ایک جہد مسلسل کی ہے، ایک مسلسل جد و جہد کی ہے. اب وہ اصول کیا ہے؟ और उन उसूलों का तहफ्फुज किन उसूलों के तहत किया गया, उसका हम थोड़ा सा आज जायजा लेना चाहेंगे। और इन उसूलों को अगर हम समझ लेते हैं जिसका तहफ्फुज वो कर रहे थे, और इन उसूलों का तहफ्फुज भी बाज़ क़वानीन के तहत कर रहे थे, अगर हम उसका भी जायजा लेते हैं तो कुछ वाज़ेह होता है कि मुख्तलिफ हालात में हम उनकी सीरत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। सबसे बड़ा उसूल जिसका तहफ्फुज चाहते थे वो क्या चीज थी? आया अपनी इमामत थी, उसका तहफ्फुज चाहते थे, अपनी खिलाफत थी, उसका तहफ्फुज चाहते थे, या कोई और उनवान हमें देखना पड़ेगा, उसका तहफ्फुज पहले बनाने में चाह रहे थे। तो अगर हम मैं कलिमात को बताते तो मैं गुजारिश कर चुका हूँ, लिहाजा भी सिर्फ दावे को अर्ज करूंगा, सिर्फ उनके दावे की तरफ ज्यादा तवज्जो दूंगा। तो जो वो दावा कर रहे हैं वो ये है कि हम पहले मरहले में दीने मोहम्मदी का दिफा चाहते हैं, दीने इस्लाम का दिफा चाहते हैं, दीने इस्लाम ऐसा दीन कि जो अपनी असालत के ऊपर बाकी रहे, यानी इसमें कोई शुबा नहीं है। नबी अकरम की हदीस भी हमारे पास मौजूद है कि नबी अकरम ने फरमाया कि मेरी बात मेरी उम्मत के अंदर फिरके बन जाएंगे, 72 फिरके होंगे और एक फिरका नाजिया होगा, निजात पाने वाला होगा। ये रिवायत अहले सुन्नत के पास भी मौजूद है और शियों के पास भी मौजूद है। इस रिवायत के अंदर नबी अकरम का बिल्कुल वाज़ेह मफ़हूम मौजूद है कि मेरे बाद कौम इन्हिराफ का शिकार होगी, और वो इन्हिराफ इतना शदीद होगा कि 72 फिरके ईजाद हो जाएंगे। अब जाहिर है कि 72 फिरके भी उसूल के एतबार से हैं, वरना 72 के कहीं ज्यादा करके हम जानते हैं क्या बन चुके हैं। तो ये जो इन्हिराफ आ रहा है, सबसे पहला उसूल जो अल्लाह की हयात तैयबा के अंदर कार फरमा है वो ये कि इस्लाम को उसकी असालत के ऊपर हिफ्ज किया जाए, इस्लाम अपनी असली तालीमात की सूरत में महफूज हो जाए। अब उस इस्लाम को अपनी असली तालीमात की सूरत में महफूज करने की खातिर मुमकिन है कि वो अपने खिलाफत के दावे से कुछ देर के लिए सर्क नजर कर दें, यानी वो ये कहें कि ठीक है हमारा दावा खिलाफत है, लेकिन उस दावे खिलाफत के बावजूद हर सकूत अख्तियार करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वक्त दावे खिलाफत के इजहार में असल इस्लाम को खतरे में पाते हैं, असल इस्लाम को खतरे में पाने की वजह से वो अपने खिलाफत जाहिरिया के दावे से मुमकिन है उस वक्त के लिए दस्तबरदार हो जाए, यानी दस्तबरदार में माना कि खामोशी अख्तियार कर लें और कहें कि ठीक है फिलहाल हम खामोश होते हैं। ये मरहला हमने कई दफा देखा कि अमीर मोमिन के हयात तैयबा में 25 साल उन्होंने सब्र फरमाया, उसके बाद इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो सुलह की, और उसके बाद मुसलसल अलैहिस्सलाम के सामने मुश्किल यही पेश आती रही कि वो असल इस्लाम का तहफ्फुज़ चाहते हैं या अपने खिलाफत ज़ाहिरिया को महफूज करना चाहते हैं। तो वो असल इस्लाम की तहफ्फुज़ की खातिर उस खिलाफत ज़ाहिरिया से दस्तबरदार, दस्तबरदार मैं बार बार कह रहा हूँ, दस्तबरदार इन मानों में कि खामोशी इख्तियार करते हैं और कहते हैं कि हम फिलहाल खामोश होते हैं और दूसरों को, दूसरों के सामने इस दावे के इजहार में या इस दावे के लिए उस अमली जिद्दोजहद से फिलहाल खामोशी इख्तियार करते हैं ताकि असल इस्लाम महफूज रहे। तो सबसे अहम मकसद असल इस्लाम का तहफ्फुज़ है। दूसरा मसला यह है कि असल इस्लाम तो महफूज रहे लेकिन अपना दावा भी लोगों तक इबलाग होता रहे, अपने दावे के पहुंचाने में कोई कमी ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई ये कहे कि हमने इस्लाम को तो बचा लिया लेकिन मजहब अहले बैत और वो जो फिक्र अहले बैत थी वो इस इस्लाम के बचाने में खत्म हो गई, लोगों के सामने एक ऐसा इस्लाम बच गया जिसके अंदर से अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का मकाम खत्म हो गया, तो ये भी नहीं चाहते थे। तो अगर कहीं पर वो ये देखते थे कि असल इस्लाम को एक ऐसी मुनहरिज सूरत में बाकी रखना चाहते हैं जिसमें से अहले बैत का किरदार निकल जाए, तो उस इस निकालने के किरदार के ऊपर मुकाबला करते थे, बाकायदा उसके ऊपर मुआरजा किया करते थे। लिहाजा आप तसव्वुर कीजिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान करबला के अंदर बैत के मुकाबले में इसरार करते हैं कि मैं बैत नहीं करूंगा, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं देते कि मसलन जो मुझसे बैत का मुतालबा करे वो नाबूद हो जाए, तो वो लश्कर वहीं पे बाकी रहता है, लश्कर नाबूद नहीं किया इमाम आदि मकाम ने बद्दुआ देकर। लेकिन अगर कोई आदमी ये आता है और कहता है कि तुम्हारा नबी से रिश्ता क्या है, उसको इमाम वहीं पर बद्दुआ दे देते हैं और वो वहीं पर नाबूद हो जाता है, क्योंकि इमाम नहीं चाहते कि लोगों के जहन में जो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का मकाम है वो कहीं कम हो जाए। ठीक है बैत का मुतालबा कर रहा है, जुल्म कर रहा है, इस जुल्म के मुकाबले का तरीकेकार मौजूद है, लेकिन जहां अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के मकाम को खत्म करने की कोशिश की वहां पर वो मौजज़े का सहारा लिया करते थे, बद्दुआ दी और उस बद्दुआ के जरिए से उस आदमी को वहीं पर निस्व नाबूद कर दिया। तो एक उसूल ये तय पाया कि असल इस्लाम का दिफा होगा, और इस असल इस्लाम के दिफा में दूसरा जो तय पाया वो ये कि वो अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मकाम में कोई कमी नहीं आने देंगे। तीसरा उसूल, क्या वो इस बात को कबूल करेंगे कि अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मकाम को बढ़ा दिया जाए? असल इस्लाम का दिफा चाहेंगे, असल इस्लाम के लिए जान देंगे, मुकाबला करेंगे, अपने मकाम का भी दिफा चाहेंगे, यानी ये नहीं चाहेंगे कि लोग अहले बैत के किरदार को माइनस कर दें। अच्छा, ये बात भी अर्ज करता चलूं इससे पहले कि तीसरी बहस में मुंतकिल हूं, अहले बैत अपने किरदार को क्यों इस्लाम में दिफा करना चाहते हैं? अहले बैत का एक किरदार है इस्लाम के अंदर, क्यों इस किरदार का दिफा करना चाहते हैं? अब जाहिर है सामने वाला हमसे ये कहेगा, जाहिर है हर आदमी चाहता है कि अपने किरदार को बचाए, हर खलीफा चाहता था अपनी खिलाफत को बचाए, हर सियासी लीडर चाहता है अपने सियासी किरदार को बचाए, अहले बैत भी चाहते थे कि माशरे के अंदर अपने किरदार को बचाए। अब हमें सोचना पड़ेगा कि उनका मकसद क्या था। वो ये जानते थे कि अगर मकाम अहले बैत और उनके किरदार को माशरे से माइनस कर दिया गया तो फिर इस्लाम का तहफ्फुज किसी भी मकाम में मुमकिन नहीं रहेगा, फिर इस्लाम के मुकाबले में इस्लाम के अंदर जो इन्हराफात ला जा रहे थे उनका मुकाबला करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं होगा। आप तसव्वुर कीजिए, 61 हिजरा में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद का मुकाबला किया, और वो जो यजीद का मुकाबला था वो एक जुमले में अगर हम खुलासा करना चाहें तो वो जो बहुत मशहूर है हमारे सामने जुमला कि पूरी दुनिया ने बैत कर ली थी, अब यजीद इमाम हुसैन से बैत पर क्यों इसरार कर रहा था जब सारा मुसलमान बैत कर चुके थे? यानी अगर आप उस जमाने की तारीख दानों से पूछें तो तारीख दान कहेंगे तीन आदमी थे जिनकी बैत के लिए यजीद ने इसरार किया, इसका मतलब बाकी सब लोग बैत कर चुके थे, बाकी सबकी बैत का ऐसा कोई मसला ही नहीं था। इमाम हुसैन, अब्दुल्लाह बिन उमर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर, और उन तमाम में ढूंढ कर यजीद ने इमाम हुसैन के ऊपर हाथ रखा और कहा इनसे बैत मुझे जरूर चाहिए। क्यों बैत चाहिए? अहले बैत का मकाम ऐसा मकाम था कि जब तक वो किसी चीज को कबूल ना करते लोग उसे इस्लाम के अंदर शामिल नहीं करते। तसव्वुर फरमाइए, यजीद जानता था कि मैं सारी दुनिया से बैत ले लूं मेरा इस्लामी किरदार साबित नहीं होगा। कब मेरा इस्लामी किरदार साबित होगा? वो जो नाम नेहाद किरदार था वो इस्लामी कब साबित होगा? जब हुसैन बैत कर लेंगे। और इमाम अली मकाम भी जानते थे। अब मिसाल के तौर पर हमसे कोई ये कहे भाई तकिये में झूठ बोलना सही है या गलत है? यार तकिये में झूठ बोलना सही है, तो क्यों इमाम अली मकाम ने अपनी दानिश में सवाल करने वाला कहता है तकियतन एक झूठ क्यों नहीं बोल लिया? एक झूठ बोल देते तकियतन और कह देते ठीक है मैंने तुम्हारी बैत की, अब मामला खत्म हो जाता। यहाँ पे मामला सिर्फ एक तकिये की झूठ का नहीं था, यहाँ पे मामला इस बात का था कि इमाम अली मकाम अगर बैत करते तो यजीद का सारा किरदार इस्लामी किरदार कहलाता, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोग एक मेयार इस्लाम के तौर पर देख रहे थे। अब वो जो दुश्मन की ख्वाहिश है वो पहले मरहले में तो ये है कि ठीक है हुसैन इस्लाम का मेयार है, अब ये जो हुसैन इस्लाम का मेयार है ये हमारे काम आ जाए। वो कैसे काम आए? मेरी गलत हरकतों को हुसैन कह दे ये सही है तो फायदा क्या होगा? मेरी हरकतें इस्लामी हो जाएंगी। तसव्वुर कीजिएगा, जालिमों की पहली ख्वाहिश क्या है? पहली ख्वाहिश ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इसके किरदार की तायद कर दें, तायद कर दें तो फायदा क्या होगा? यजीद का किरदार इस्लामी किरदार बन जाएगा। ये पहला फायदा जो उठाना चाहता है। अच्छा, अगर ये फायदा ना मिले तो क्या चाहता है? अगर ये फायदा ना मिले तो फिर क्या चाहता है? फिर कहते हैं मैं हुसैन को खत्म कर दूंगा ताकि ये मेयार हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि जिसको इस्लाम साबित करना हो वो अहले बैत के दरवाजे पर आए। तसव्वुर कीजिए कि यजीद ने जितनी कोशिश की थी वो सब दूसरे हदफ के ऊपर आ गई थी। अशर अशूर के बाद, अशर अशूर में उसने इमाम हुसैन को खत्म कर लिया था, इमाम हुसैन को शहीद कर दिया था, अब बैत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जंग कहां से शुरू हुई थी कि बैत करेंगे या नहीं करेंगे? असर आशूर तक इमाम ने शहादत देकर कहा हम बैत नहीं करेंगे। सवाल ये, अब जंग क्यों चल रही है? अब जंग खत्म होनी चाहिए भाई। सवाल बैत था, जिस आदमी से आप सवाल बैत कर रहे थे वो अब दुनिया में नहीं है, अब आप जंग किस बात की कर रहे हैं? अब वो जंग किस बात की कर रहा है? दूसरे हदफ की खातिर जंग कर रहा है। पहला हदफ तो पूरा नहीं हुआ कि हुसैन बैत करते और इसका सारा किरदार इस्लामी हो जाता, अब दूसरा हदफ क्या है? इसको ये जो इमाम हुसैन और अहले बैत मेयार इस्लाम बने हुए इस मेयार को खत्म कर दिया जाए। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आइंदा आने वाली नस्ल में अगर कोई इन्हराफ करना चाहेगा तो उसे हुसैन जैसे से बैत लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इस बात पे तवज्जो फरमाइएगा कि वो ये चाहता था कि इमाम हुसैन और उनके खानदान के पास ये जो किरदार था कि जिसको ये कबूल करते थे लोग उसे इस्लाम कहते थे, चाहता था ये किरदार खत्म हो जाए। अगर ये किरदार खत्म होता तो क्या फायदा होता? अगला कोई इन्हराफ डालना चाहता तो उसे हुसैन जैसे से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं थी। ये वो चीज थी जिसका अहले बैत दिफा कर रहे थे, ये वो चीज थी जिसका अहले बैत दिफा कर रहे थे। यानी अब अगर कोई अहले बैत के दिफा की तरफ जाए तो अहले बैत के दिफा के दो दर्जे थे। पहली बात, पहले तो इस बात का दिफा किया जाए कि कोई इस्लाम में इन्हराफ डालने वाला आ ना सके, तो वो चाहते थे खिलाफत के ऊपर कोई काबिज ना हो। पहले मरहले में इस बात पे दिफा किया कि कोई खिलाफत जाहिरिया पर गासिब ना हो जाए। क्यों? गस्ब करेगा तो इस्लाम में इन्हराफ डालेगा। अब अगर कोई गस्ब कर गया तो कोई दूसरा काम ना कर पाए। दूसरा काम क्या है कि वो इनके मकान को इस तरह से खत्म करे कि आइंदा इन्हराफ डालने के लिए उसे इनके अप्रूवल की जरूरत ना पड़े। उन्होंने दोनों मकाम पे दिफा किया, पहले मकाम पे भी दिफा किया कि कोई खिलाफत जाहिरिया पे गासिब ना हो, और अगर गासिब हो गया तो फिर दूसरे मकाम पे दिफा किया कि अब हम किसी गलत इंसान को अप्रूवल नहीं देंगे। अप्रूवल नहीं देंगे तो लोग हमेशा जान लेंगे कि ये आदमी, इस आदमी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब उन्होंने जब तीसरा हरबा शुरू किया कि उन्होंने अहले बैत के किरदार को मखदूश करने की कोशिश की रिवायतों के जरिए से, जाले रिवायत की, जो हमने चौथे इमाम के हालात के अंदर अर्ज किया कि जाले रिवायत का जो बाजार चौथे इमाम के जमाने में गर्म हुआ हुआ था उसका, उसकी मिसाल कोई नहीं मिल पाएगी। कि अब्दुल मलिक के जैसे लोग और मरवान बिन हकम के खानदान के बाकी लोग सबके सब पूरी जिद्दोजहद कर रहे थे कि जाले रिवायत के जरिए से अहले बैत के किरदार को मखदूश कर दिया जाए। अहले बैत के किरदार को एक ऐसे मकाम पे ले आए कि उनके बाद में आने वाले लोग जब इस्लाम में तहरीफ करें तो कोई ये समझ ही ना पाए कि अहले बैत का किरदार क्या है। ये वो जगह थी जहां अहले बैत के अथार उठे और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमारे दिफा का दूसरा मरहला शुरू हो जाएगा, हम अपने मकाम का दिफा करेंगे। अपने मकाम का दिफा कैसे करेंगे? लोगों को ये साबित करेंगे कि नहीं, इस्लाम अहले बैत के बगैर मुमकिन नहीं है। ये वो काम था जो चौथे इमाम ने अंजाम दिया। चौथे इमाम की सीरत तैयबा के अंदर यजीद की 61 हिजरा वाली कोशिश का भरपूर मुकाबला हुआ और अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का वो मकाम बाकी रहा कि जिसकी ये तायीद करें वो इस्लाम है और जिसकी ये तरदीद करें वो इस्लाम नहीं होगा, वो मकाम बाकी रह गया। तो यजीद अपने मारके में दोनों महाज में नाकाम हुआ, न वो बैत ले पाया न वो मकाम को खत्म कर पाया, और अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम अपने मारके में दोनों महाज पे कामयाब हुए, न उन्होंने बैत की न उनके मकाम के अंदर कोई तनज्जुल जाहिर हुआ। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा, अब वो जो मुकाबला करने वाले हैं जाहिर वो इंतहाई होशियार लोग हैं, वो कोई बेवकूफ लोग नहीं है। यानी यकीन फरमाइए, हम लोग बाज़ोकात तारीख के मुताले में यूं समझने लगते हैं जैसे जो मुकाबला करने वाले लोग हैं अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम के, वो चंद बेवकूफ लोग हैं और उन्होंने चंद उल्टी सीधी हरकतें की हैं। हरगिज़ ऐसी कोई चीज नहीं है। इंतहाई शातिर लोग हैं, इंतहाई चालाक लोग हैं, एक एक हदफ एक एक हरकत को सोच समझ के अंजाम देते हैं। इनके अंदर कुछ लोग हैं जो यजीद जैसे बेवकूफ होंगे, लेकिन बाकी लोग यजीद जैसे बेवकूफ नहीं है, इंतहाई होशियारी के साथ काम को अंजाम देते हैं। मिसाल के तौर पर इनकी होशियारी की एक दलील देखिएगा। पहले इन्होंने मुकाबला किया अहले बैत के साथ दुश्मनी करके, दुश्मनी को पहुंचाया कहां तक? मैदान करबला तक। फिर उस दुश्मनी को बाजारों में लेके आए, दरबारों में लेके आए, अपने काम के अंदर नाकाम हो गए, अहले बैत का किरदार बाकी रहा। 95 हिजरा में चौथे इमाम की शहादत हो गई और इमामत के मनसब के ऊपर पांचवें इमाम फाइज हुए और पांचवें इमाम का दौर इमामत शुरू हुआ जो तकरीबन 114 हिजरा तक रहा। 114, बाज लोगों ने 118 भी कहा है, लेकिन 114 की रिवायत को ज्यादा मजबूत तसव्वुर किया जाता है। 114 से छठे इमाम की इमामत का दौर शुरू हुआ और 148 हिजरा तक रहा, 148 हिजरा तक। अब ये जो दौर है इसमें मुकाबले की कैफियत बिल्कुल तब्दील हो गई है। अब इस दौर के अंदर कोई मुकाबला करने वाला अहले बैत को बेजाहिर कत्ल की धमकियां देकर मुकाबला नहीं कर रहा जैसे कि चौथे इमाम के जमाने में था। अब्दुल मलिक, हशाम, सलमान, ये सब लोग कोशिश कर रहे थे कि अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम को तलवार की नोक पे रखें और अपने काम को निकालें। अब पांचवें और छठे इमाम के जमाने में कम से कम कुछ अरसे तक कोई ऐसा नहीं है कि जो तलवार की जोर पर आए और कहे कि अब आप, हम आपको शहीद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मुकाबले की कैफियत एक और है, वो क्या है? कुछ लोग उन्होंने लोगों के अंदर ऐसे डाले जो अहले बैत के बारे में गुलूब करें और गुलूब करके लोगों को अहले बैत से दूर कर दें। ये मुकाबले का नया फेज है। इससे पहले गुरूब करने वाले लोग थे, अमीर मोमिनीन के जमाने में भी गाली मौजूद थे कि जो अहले बैत अतहरम और अमीर मोमिनीन की ज़ात अक़दस के बारे में नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे और जिनके बारे में रिवायत मशहूर है कि अमीर मोमिनीन ने उनको सजा भी दी और उनको जिंदा जलाया। लेकिन गुलूब की तहरीक इल्मी दर्जे तक पहुंचाई ये पांचवें इमाम के दौर में हुआ। पांचवें इमाम के दौर में लोग बाकायदा ऐसे आए कि जो गुलूब के जरिए से लोगों के अंदर नुफूज कर रहे थे। एक रिवायत में आपकी खिदमत में इस सिलसिले में अर्ज करना चाहूंगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब मैं दोबारा कहूंगा, आप इस पर तवज्जो दीजिए, गुलूब क्यों शुरू हुआ? गुलूब दोस्तों की तरफ से शुरू नहीं हुआ है, गुलूब दुश्मनों की तरफ से शुरू हुआ है। क्यों दुश्मनों ने गुलूब शुरू किया? ताकि अहले बैत के मकाम को माशरे के अंदर साकित कर दें। अब देखिए मिसाल के तौर पर, अगर लोगों के दरमियान जो बहरहाल किसी हद तक इस्लाम से वाकिफ हैं, कोई आकर ये कहना शुरू कर दे कि नाउज़ुबिल्लाह पांचवें इमाम का मकाम नबी अकरम से बढ़कर है, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर दो तरफ से पड़ेगा। एक तो ये कि जो इमाम के मानने वाले हैं वो अपने अकायद में तरदीद का शिकार हो जाएंगे कि भाई वाकई बढ़कर है भी या नहीं है, और दूसरा नुकसान ये होगा कि इमाम पंजुम का जो मकाम लोगों के दरमियान है, आम मुसलमानों के दरमियान है, वो तरदीद का शिकार हो जाएगा। आम मुसलमान कहेंगे कि ये फर्द नाउज़ुबिल्लाह अपने बारे में ये दावा कर रहा है कि मेरा मकाम इमाम से ही बढ़कर है, नबी अकरम से ही बढ़कर है, तो खुद ब खुद इमाम का मकाम कम होगा। तो ये गुलू कोई शियों की बेवकूफी का नतीजा नहीं है कि मसलन हम ये कहें कि चंद सादा शिया जमा हो गए थे और उनके दिमाग में कुछ मसाइल हल नहीं हुए तो वो गुलूब का शिकार हो गए। नहीं, एक इल्मी तहरीक चलाई दुश्मनों ने अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम को मुश्किल में मुब्तला करने के लिए। मिसाल के तौर पर उस जमाने में एक शख्स था मुग़ीरा इब्न सईद और एक और शख्स था बयान इब्न समान, ये पांचवें इमाम के असहाब में शुमार किए जाते थे और इमाम के मकाम इमाम के साथ बैठा करते थे, उठा बैठा करते थे और बाहर जाकर अहले बैत के बारे में वो रिवायतें करते थे कि जिनका खुद अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम बाद में इनकार किया करते थे। मिसाल के तौर पर मैं एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूं, ये पांचवें इमाम से मंसूबे फरमाए, इन्ना शीअतना मन अता अल्लाह, हमारा शिया वो है जो अल्लाह की इताअत करे, शीअतना अहलुल वरा वल इज्तिहाद व अहलुल वफा वल अमाना व अहलुल ज़ुहद वल इबादा व असहाबुल इहदा व खमसीना रकअतन फिल यौम वल लैला अल क़ायमून बिल लैल व सायमून बिन नहार युज़क्कूना अमवालहुम व युहिज्जून अल बैत व यज्तनिबून कुल मुहर्रम, हमारे शिया वो हैं जो तक़वा और इज्तिहाद रखते हैं, उनके अंदर वफा है, वो अहले अमानत हैं, उनमें ज़ुहद है, उनमें इबादत है, दिन और रात में 51 रकअत नमाज पढ़ते हैं, रात को नमाज में कायम रहते हैं यानी रात को इबादत किया करते हैं, दिन में रोजे रखते हैं, अपने माल में से ज़कात देते हैं, अल्लाह के घर का हज करते हैं और हर हराम से बचते हैं। सवाल ये, इतनी तूलानी रिवायत बोल दी शिया के ऊपर, ये क्यों बोली इमाम ने? वजह क्या है? पीछे वो सारी तहरीकें चल रही हैं जो कह रही थी कि जो इमाम का मानने वाला है वो जन्नती है, उसे किसी काम की कोई जरूरत ही नहीं है। ये गालियों का अकीदा था, गालियों का अकीदा यह था कि महज मारिफत इमाम जन्नत में जाने के लिए काफी है। उस जमाने में यह अकीदा इल्मी तौर पर राइज किया गया, इसको फैला दिया गया और आइम्मा अतहर अलैहिस्सलाम इसके खिलाफ भी कयाम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि ये तहरीक भी कोई हिमायत की तहरीक नहीं थी, ये दुश्मनों की चलाई हुई तहरीक थी उनके मकाम को माशरे के अंदर तनज़ुल दिलाने के लिए। यानी एक और रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, ये मुग़ीरा इब्न सईद के जो पांचवें इमाम के असहाब में से था और इस तरह की बातें किया करता था, एक दिन आता है इमाम के पास इस तरह से कहता है, जरा इस फितने परस्त आदमी को देखिए, इमाम की खिदमत में आता कहता है कि ए इमाम बाकर, आप इल्मे गैब का दावा कर दीजिए, अहले इराक को मैं आपके लिए तैयार करूंगा। आप इल्मे गैब का दावा कीजिए, अहले इराक को मैं आपके लिए तैयार करूंगा। इमाम आली मकाम ने उसको अपने पास से भगा दिया, रिवायत में लिखा है अपने पास से भगा दिया और मोहम्मद इब्ने अनफिया के बेटे अबू हाशिम से कहा और अबू हाशिम ने बाद में उसकी बहुत मरम्मत लगाई, ये रिवायत के अंदर मौजूद है, तो बहुत ज्यादा उसकी पिटाई लगाई, इतना उसको मारा कि नजदीक था कि मर जाए। क्यों? पहचान लिया था कि आदमी दुश्मन है, ये हमारा दोस्त नहीं है, ये हमारा दुश्मन है और ये हमारी सफा में घुसकर हमारे मकाम को खत्म करना चाहता है। ये अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के दिफा में ये मरहला भी शामिल था कि वो गुलात का भी मुकाबला करेंगे और अपने मकाम को लोगों के अंदर साबित करेंगे। अब और अहले बैत अतहर अलैहिस्सलाम के मुकाबले के अंदर अगर हम देखना चाहें तो क्या है, वो ये है कि इस्लाम का इल्मी दिफा एक ऐसी सतह पर कि जिसमें एक अकल के जरिए से इस्लाम को साबित किया जा सके। मैं एक नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं, ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ایسی موجود ہیں، خود امام پنجم سے روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں، امام ششم سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ کوئی چیز امام نے راوی کو دکھائی اور کہا کہ دیکھو یہ کبھی کسی کو مت بتانا سوائے اس کے جس کا دل پہلے سے امتحان کر لیا گیا ہو. آپ احسن المقال کتاب کے اندر دیکھ لیجئے، منتہی الامال جو شیخ عباس خمی کی کتاب ہے، اس کے اندر امام عالی مقام کی روایت موجود ہے، کسی صحابی کو روایت دی، کہا اس روایت کو اپنے پاس رکھو، روایت بتا دی، واقعہ دکھا دیا، مثلا کوئی معجزہ دکھایا کہ اس کو مثلا کمرے میں لے گئے، سونا بہت زیادہ دکھا دیا، کہا یہ دیکھو یہ ہماری دسترسی کے اندر ہے، پھر اس آدمی سے کہا کہ اب اس روایت کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا اور یہ روایت صرف اس کو بتانا جس کا دل پہ پہلے سے امتحان کر لیا گیا ہو. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، کیا میرے اور آپ کے دل کا امتحان ہوا؟ میرے اور آپ کے دل کا تو امتحان نہیں ہوا، پھر مجھے اور آپ کو روایت کیسے پتہ چل گئی؟ جبکہ امام عالی مقام نے فرمایا تھا کہ یہ روایت اس کو بتانا جس کے دل کا پہلے سے امتحان لے لیا ہو، اور کہا خبردار اس کو کسی ناحق کے ہاتھ لگنے نہیں دینا. اب سوال یہ، جب آپ نے وہ روایت احسن المقال کے اندر لکھ دی جو اردو میں چھپ گئی، اردو میں چھپنے تب فارسی میں تھی یا عربی میں بھی تھی، کیا کوئی ضمانت گارنٹی ہے کہ اس روایت کو صرف وہی پڑھے گا جو ہمارے شیعوں میں سے ہوگا اور وہ جس کے دل کا پہلے سے امتحان لے لیا گیا؟ ظاہر کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ سب چیزیں پھیل گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں، یا یہ روایت جعلی روایت ہے، یہ اصل روایت صحیح روایت ہے ہی نہیں، کیونکہ امام نے اپنے راوی سے کہا تھا کہ اس کو دینا جس کا دل پہلے سے امتحان لے لیا اور یہ روایت اور جگہ پھیل گئی، یا روایت جعلی روایت ہے، یا راوی نے غلط کیا کہ اس نے سب لوگوں کو یہ اطلاع دے دی، مجھے بھی پتا چل گیا جبکہ میرے دل کا اللہ نے کوئی ایسا امتحان نہیں لیا. آپ کا میرا سب کا، وہ کتاب سب کے سامنے موجود ہے، شیعہ بھی پڑھ رہے ہیں، سنی بھی پڑھ رہے ہیں، مخالف اسلام بھی پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں اس کو. کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی اس میں کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، یا وہ روایت جعلی روایت ہے، یا راویوں نے تقصیر کی کہ جس چیز کو چھپانا چاہیے تھا اس چیز کو لوگوں کے سامنے برملا کر دیا. اب آپ تصور فرمائیے، معمولاً ایسی روایات وہ روایتیں جس کے اندر کوئی غیر معمولی معجزہ دکھایا گیا ہے، معمولاً یہ روایت وہ روایت ہیں جس کے اندر کوئی غیر معمولی معجزہ دکھایا گیا، اور وہ جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ معمولاً ایسی روایات کو نشانہ بنا کر ہم سے کہتے ہیں کہ تم لوگ اپنے اماموں کو انبیاء سے بڑھ کے مقام دیتے ہو. آپ تصور کیجئے، آپ نے یقینا نام سنا ہوگا یوسف لدھیانوی کا، یوسف لدھیانوی جس کو یہیں پر مار دیا گیا تھا ایک حملے کے اندر. یوسف لدھیانوی صاحب کو کسی شیعہ جن کا نام ہم جانتے ہیں اس نے اپنے کتاب کے ابتدا میں ان کا خط بھی چھاپا ہے، ایک شیعہ صاحب ہیں، انہوں نے ایک خط تحریر کیا یوسف لدھیانوی کو، اور وہ خط کافی طولانی خط ہے، 5-6 صفحے کا، اور اس میں انہوں نے ان کو کہا کہ ہمارے عقائد یہ ہیں، آپ کا جو عمل ہے ہمارے خلاف، ہمارے خلاف جو رد عمل ہے وہ مناسب رد عمل نہیں ہے. یوسف لدھیانوی نے وہ خط اپنی کتاب کی ابتدا میں چھاپا ہے، بہت احترام کے ساتھ نام لیا ان کا اور کہا معزز و محترم فلاں نے یہ ہمیں خط لکھا، ہم اس خط کے جواب میں یہ کتاب لکھ رہے ہیں. 350-350 صفحے کی کتاب لکھ ڈالی، اور اس 350-350 صفحے کی کتاب میں جب وہ امامت کے چیپٹر پر پہنچا تو ساری ایسی احادیث نکال کر رکھی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ جو شیعہ ہیں یہ اپنے اماموں کو انبیاء کے مقام سے بھی بڑا بناتے ہیں. اب دیکھیے، ابھی آپ نے روایت میں نے آپ کے سامنے سنائی نا کہ مغیرہ بن سعید نے آ کر امام سے کہا آپ علم غیب کا دعویٰ کیجئے، عراق کے لوگوں کو میں آپ کے لیے تیار کروں گا. اس کتاب کے اندر مثلا کوٹیشن دی ہوئی ہے کہ شیعہ اپنے اماموں کے لیے غیب کے علم کے قائل ہیں، غیب کے علم کے قائل ہیں، اور ایسی 2-4 حدیثیں دی ہوئی ہیں جس میں کسی ماننے والے نے یہ کہا کہ علم غیب ہمارے ائمہ کے پاس تھا اور قرآن کریم، پھر مثلا یوسف لدھیانوی کہتا ہے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ علم غیب صرف اللہ کے پاس تھا، اور شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علم غیب ان کے ائمہ کے پاس بھی تھا، اور یہی وہ دعویٰ ہے جس کو غلاب نے جب ائمہ کے سامنے کیا تو انہوں نے اسے باہر نکلوا دیا اور مار بھی لگوائی کہ یہ ہمارے بارے میں ایسے دعویٰ کر رہا ہے جو ہماری شخصیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی. میں سمجھ رہا ہوں یہ ہماری بنیادی مشکل ہے کہ وہ چیزیں جو یا تو اسرار تھیں، ہر ایک کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے تھی، وہ ہر ایک کے ہاتھ لگ گئی، یا اصلا گڑ لی گئی، کچھ چیزیں گڑ لی گئی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے نتیجے میں اب جو مخالفین اہل بیت اطہار علیہ السلام ہیں ان پوائنٹس کو سامنے لا کر اہل بیت کے سامنے अपने लिए महाजराई कर रहे हैं और अपने लिए एक मुकाबला तैयार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि उनका जो दिफा था अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम का, वो इस तरह कई कई महाज के ऊपर चल रहा था कि कभी एक महाज होता जिसमें वो दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, जिसमें दुश्मनों का तलवार से मुकाबला कर रहे थे, फिर वो महाज था जहां पर वो अपनी हैसियत का दिफा कर रहे थे, फिर वो महाज था जहां गुलूब के सामने मुकाबला कर रहे थे, एक महाज वो था जहां वो इस्लाम के खिलाफ होने वाले नजरियाती हमलों का मुकाबला कर रहे थे। एक महाज ये भी था इस्लाम के खिलाफ नजरियाती हमला हो रहा है, अब उन नजरियाती हमलों का वो मुकाबला किया करते थे। अच्छा, हम लोगों के सामने जब ऐसा कोई हमला होता है तो हम तो रद्दअमल दिखाते ही नहीं है, हम ये सोचते हैं ये हमला इस्लाम पर है, शिया पे नहीं है, तो हमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये नहीं मालूम क्यों हमारे जान में फिक्र आई। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम हर उस हमले के सामने आ जाया करते थे जो इस्लाम पर हो रहा था। मिसाल के तौर पर एक छोटी सी हदीस आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक छोटी सी बल्कि वाकया के, अल्लामा नक़्क़न साहब ने अपनी किताब में लिखा कि एक दफा कहीं यौम हुसैन हो रहा था और उस यौम हुसैन में मुसलमानों को और नॉन मुस्लिम को सबको जमा किया गया, उसमें यहूदी भी, उसमें ईसाई भी आए, हिंदू भी आए और सब लोग वहां पर, सिख भी आए उसके अंदर, और उन्होंने यौम हुसैन मनाया। अब वो यौम हुसैन में मनाने में सब लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीफें की, किसमें उसमें किसी कसीदा पढ़ने वाले ने अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के असहाब की भी कसीदा पढ़ा, असहाब के लिए भी कसीदा पढ़ा, बात सही है, असहाब जो है मोहतरम थे जो इमाम हुसैन के असहाब थे। उसी दौरान कोई हिंदू स्टेज पर गया, उसने ये, अच्छा किसी ने जालिमों के खिलाफ भी एक पढ़ा कि भाई जो जालिम थे वो नमाज पढ़ रहे थे और इमाम को शहीद कर रहे थे, ये बात भी सही है भाई, जालिमों के खिलाफ ये कसीदा पढ़ दे, जालिमों के खिलाफ उनकी मजम्मत में पढ़ा उसने, ये बात भी सही। अब जनाब इससे फायदा उठा लिया, एक हिंदू गया स्टेज पर, उसने अपनी तकरीर इमाम हुसैन की शान में की और उसने कहा मुसलमानों एक बात याद रखो, कातिलीन इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था, तुम सब मुसलमान थे। लो भाई मार्का ही खराब हो गया। अब क्या है, सारे शिया खुश हो रहे हैं कि हाँ ये इसने बहुत अच्छी बात कही, कातिली ने इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था। अब वो जो सिख आया उसने भी यही कहा, हाँ कातिली ने इमाम हुसैन में कोई सिख नहीं था। वो ईसाई आया उसने भी यही कहा, कातिली ने इमाम हुसैन में कोई ईसाई नहीं था। और सब नीचे खुश हो रहे हैं लोग कि हाँ यार सही कह रहे हैं, कातिली ने इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था, सिख नहीं था, ये सब हमारे दोस्त हैं। अच्छा ये तो दोस्त हैं, जो नमाज पढ़ रहे थे वो दुश्मन है सारे, क्यों, उन्होंने कत्ल किया। अब ये हमारी सादगी है, अहले बैत ऐसा नहीं होने देते, होते तो कुछ और करते। अब लिहाजा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के मानने वाले मसलन अल्लामा नक़्क़न साहब अहले इल्म थे, अहले फजल थे, वो जान गए कि ये क्या बेवकूफी हम कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मसलन हम कहें कि कातिल इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था, सिख नहीं था, ईसाई नहीं था, ये सारे अच्छे हैं और जो मुसलमान है वो हमारे दुश्मन है। नहीं, वो गए मेंबर के ऊपर, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कही, कादिन इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था, कादिन इमाम हुसैन में कोई सिख नहीं था, कादिन इमाम हुसैन में कोई ईसाई नहीं था, लेकिन ये बताओ कि असहाबे इमाम हुसैन में कोई सिख था, असहाबे इमाम हुसैन में कोई हिंदू था, असहाबे इमाम हुसैन में कोई ईसाई था, तो असहाब भी तो वही थे जो मुसलमान थे, तो इस तरह को क्यों ले रहे हो कि कादिन इमाम हुसैन में कोई हिंदू नहीं था। ये बताओ असहाबे इमाम हुसैन में कौन लोग थे, असहाबे इमाम हुसैन में भी इस्लाम के लोग थे, मुसलमान थे। हाँ, अब हमारे लिए फख्र है कि साहबे इमाम हुसैन में सारे मुसलमान थे, वहां पर कोई हिंदू नहीं था। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किस चीज का दिफा कर रहे हैं, क्या चीज पेश की जा रही है। एक एक अमल को अगर हम इतनी बारीकी से लेके आए तब हम अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की उस जोहदे मुसलसल में साथ देंगे। जो बात हम आज साबित करना चाह रहे हैं वो ये है कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम एक एक मौके पर कई कई महाज पे लड़ रहे थे, लिहाजा महाज इतना वाजे नहीं था। मिसाल के तौर पर इतना वाजे होता जैसे एक जंग के अंदर होता है कि एक फौज यहां खड़ी, दूसरी फौज यहां खड़ी है, इस फौज ने उस पर हमला करना है, पीछे जाना है, उस फौज ने यहां हमला करना है, यहां आना है। जंग ऐसी जंग नहीं थी, जंग कई अबआद पर मुश्तमिल एक पेचीदा जंग थी जिसमें एक खत्ते मुस्तकीम था जिसको अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम दिफा कर रहे थे। अब ये खत्ते मुस्तकीम से मेरे जहन में एक जुमला और आ गया, फिर मैं यहां पर खत्म करूंगा। आज हमने सोचा सिर्फ 40 मिनट के ऊपर बात करेंगे। अब ये सिरात मुस्तकीम जिसका अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम दिफा कर रहे थे, ये क्या चीज थी। एक बड़ी खूबसूरत ताबीर किसी ने कही कि सिरात मुस्तकीम को हमें ये बताया गया है कि वो तलवार से ज्यादा बारीक है। आप किसी से पूछे पुल सरात क्या है तो कहते हैं पुल सरात तलवार से ज्यादा बारीक, और मसलन कहते हैं किससे ज्यादा बारीक है, बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। बाल से ज्यादा बारीक है और तलवार की धार से ज्यादा तेज है। इस पुल पर से जो गुजर के जाएगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, सही है। कहते हैं जो इस पुल पर से जाएगा, मैं कहूंगा हाँ यही वो खत था जिसको अहले बैत ने दिफा किया। अहले बैत जिस खत का दिफा कर रहे थे, जिस फिक्र का दिफा कर रहे थे वो भी बाल से ज्यादा बारीक थी और वो भी तलवार की धार से ज्यादा तेज थी। अब इसका मतलब क्या है, बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज। अगर खुदा ना करे कयामत के दिन ऐसा कोई पुलिस हरात लगा दिया गया तो सारे नाटे और करतब दिखाने वाले गुजर जाएंगे और सारे मोमिन और सुहाब बेचारे नाउज़ुबिल्लाह ताला उस पुल से नीचे गिर जाएंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि वहां पे मान वाकई कोई पता चला कि एक बाल लगा हुआ है और वो इतना तेज है कि पांव रखा तो पांव कट गया और उधर नाटे जो है वो चले गए सारे सर्कस करने वाले। ऐसा नाउज़ुबिल्लाह, हम क्यों दीन को अपने मस्कारा बनाए, दीन को ऐसी थोड़ी है। अब ये क्या चीज है, मतलब कहने का ये है बाल से ज्यादा बारीक होगा, तलवार की धार से ज्यादा तेज होगा, वो ये होगा कि इतना बारीक है कि आपको हक और बातिल में तमीज देना आसान काम नहीं है। अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम जिस खत के ऊपर चल रहे थे और जिस खत का दिफा कर रहे थे किसी के लिए उसको तशखीस देना अपनी जिंदगी के अंदर, वो ये कहे कि मैं भी बिल्कुल उसी रास्ते पर चलूंगा जो अहले बैत का रास्ता था, ये आसान काम नहीं है। उसके अंदर लोगों ने मिलावटें बहुत ज्यादा की हुई है, तो इसको पहचानना इतना ही सख्त है जैसे बाल से ज्यादा बारीक हो, और उसको पहचानना सख्त काम होता है। अब वो तलवार से ज्यादा तेज है, तलवार की धार से ज्यादा तेज है, क्या मतलब, यानी ये एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर जब आप चलेंगे तो आपको यकीनन जख्म आएगा, जब आप इसके रास्ते पर चलेंगे तो यकीनन आपको नुकसानात बर्दाश्त करने पड़ेंगे, यकीनन आपको जरबात दुश्मनों की बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ये वो पुले सरात है। अब अगर यूं तसव्वुर कीजिए तो पुले सरात यही जिंदगी है, यही जिंदगी पुले सरात है जिसमें और आप जिंदगी गुजार रहे हैं। मसलन मेरे और आपका अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम से जमानी फासला 1200 साल का है। इस 1200 साल में दुश्मनों ने हर किस्म की जिद्दोजहद की कि इनकी फिक्र को खराब कर दें, हर किस्म की फिक्र को इसके साथ मिलाने की कोशिश की, कभी गुलूफ आ गया, कभी तकसीर आ गई, कभी अहले बैत के मकाम को इधर से उधर ले गए, कभी जाली इमामत के दावे करवा दिए, कभी इमामत के रास्ते में और रोड़े अटका दिए। 1200 साल के बाद मैं ये पहचान लूं कि वो लाइन कौन सी है जिसको अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम दिफा करना चाहते हैं और उसके तकाजे आज क्या है। ये पुल सरात, ये पुल वाकई बाल से ज्यादा बारीक हो जाएगा, ये आसान काम नहीं होगा कि मैं 1200 साल के बाद आज बेऐन ही जान लूं कि वो बारीक रास्ता कौन सा रास्ता है जिसका अहले बैत दिफा कर रहे थे, जिसमें ना गुलूब आए, ना तकसीर आए, ना कोई इन्हेराफ आए। और फिर जब मैं उसके ऊपर चलने की कोशिश करूंगा तो फिर एक दूसरी मुश्किल सामने आएगी कि इस रास्ते में मुझे जरबात का सामना करना पड़ेगा। ये वो चीज थी जो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के रास्ते में जगह जगह मौजूद थी। यानी हम जिस दौरे की बात कर रहे हैं 95 हिजरा से लेकर 148 हिजरा तक, उस दौर के अंदर ये चीज सख्त तरीन मकाम के ऊपर हमें नजर आती है। अहले बैत ने अपनी शख्सियत का दिफा किया, अपने आप को महफूज किया, और उस महफूज करने के बाद मैं अर्ज करूंगा कि वो मकाम शुरू हुआ कि उन्होंने अपने अफकार की नशर तरवीज को आगाज कर दिया। 5वें इमाम का दौर इमामत के जो 95 हिजरा से शुरू हुआ और 114 हिजरा तक गया, यानी तकरीबन 19 साल, इसके अंदर 5वें इमाम ने उस काम को अंजाम दिया कि किसी हद तक अफकार लोगों के अंदर मुंतकिल हुए, और उसके बाद 114 से लेकर 148 हिजरा तक जो 6वें इमाम की हयात तैयबा का दौर है वो दौर है कि जहां उन्होंने और ज्यादा जिद्दोजहद की, यहां तक कि इस पूरे मकतब को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की फिक्र से मंसूब कर दिया गया। अब यह है कि हमारा जो काम अगले 3 सेशंस में होगा उसमें पहले सेशन में हम 5वें इमाम की इल्मी जिंदगी का जायजा लेंगे, दूसरे सेशन में 6वें इमाम की इल्मी जिंदगी का जायजा लेंगे, और जो तीसरा आखिरी सेशन होगा उसमें इनकी सियासी जिद्दोजहद का जायजा लेंगे कि सियासी तौर पर इन्होंने इन कामों को किस तरीके से अंजाम दिया। सियासी लिहाज से ये 50 साल अहम तरीन 50 साल साबित होते हैं, वो इस तरीके से कि इसी 50 साल के अंदर 132 हिजरा में, यानी 6वें इमाम की दौरे इमामत के अंदर बनी अब्बास हुकूमत पर आ गए बनी उमैया से निकलकर। और जाहिर एक अहम मौजू हमें ये सोचना पड़ेगा कि लोग बनी उमैया को पहचान चुके थे, फिर हुकूमत और वो खिलाफत ज़ाहिरिया अहले बैत को क्यों नहीं मिली, और क्यों ऐसा हुआ कि लोग फिर धोखा खा गए और बनी अब्बास से खिलाफत ज़ाहिरिया बजाय ये कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम की तरफ आती जिनके नारे के ऊपर बनी अब्बास ने शोहरत हासिल की थी, क्यों वो खिलाफत अहले बैत की बजाय बनी अब्बास की तरफ मुंतकिल हो गई। और सवाल यह कि जब वो खिलाफत बनी अब्बास की तरफ मुंतकिल हो गई तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने इसका मुकाबला करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार की, क्यों वो मैदान में नहीं आया और लोगों से कहा कि ये हमारे नाम पर हुकूमत हासिल कर रहे हैं लेकिन तुम्हें धोखा दे रहे हैं। इन उमूर का हम इंशाल्लाह अगले 3 सेशन के अंदर जायजा लेंगे। गुरु भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। یہ کتاب یہاں موجود ہے. اس کتاب کا ہم تعارف کروانا چاہتے ہیں. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر سیشن میں کوئی ایک آدھ کتاب ضرور تعارف ہو جائے. اس کتاب کا نام ہے آئمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ. آئمہ معصومین کی سیاسی زندگی کا تحقیقی جائزہ. استاد عادل ادیب اس کتاب کے مصنف ہیں. عرب مصنف ہیں, یہ عرب رائٹر ہیں. یہ کتاب پہلے عربی میں چھپی تھی, عربی کے بعد یہ کتاب فارسی میں چھپی تھی اور ایک عرصے تک فارسی میں کافی مشہور رہی اور اردو میں اس کی ضرورت احساس ہوتی رہی. تقریباً 2 سال پہلے, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے, یہ اردو میں ترجمہ ہو کر, جی ہاں, تقریباً 2 سال پہلے اردو میں ترجمہ ہو کر یہ بازار میں دستیاب ہوئی. دارالثقافہ اسلامیہ نے اس کو چھاپا ہے, یہ بازار کے اندر موجود ہے. اس میں تمام 12 ائمہ اطہار علیہ السلام کی سیاسی زندگی کا جائزہ لیا گیا ہے. ظاہر ہے 4th اور 5th امام کی حیات طیبہ کے اوپر بھی اس میں صفحات موجود ہیں. تقریباً 263 سے لے کر 301, یعنی تقریباً 40 صفحات 5th اور 6th امام کی سیاسی زندگی کے اوپر اس کتاب میں موجود ہیں. ہماری گفتگو یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں اس گفتگو سے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ اس سوال کو درود بھیجنے کے بعد بیان فرمائیے گا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. سلام ایک مقابلہ اپنے دشمنوں سے کر رہے تھے, جو ظاہری میں بھی دشمن تھے, باطن میں بھی دشمن تھے اور کھل کے سامنے تھے, اور ایک مقابلہ ان دوست نما لوگوں سے کر رہے تھے جو باطن میں دشمن تھے, مثلا غلو کرنے والے لوگ, ان سے بھی اہل بیت مقابلہ کر رہے تھے. اب اسی مقابلے کو ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں ایسی باتیں کہیں گے جو شاید اسی مرحلے میں چلی جائیں جو وہاں پر غلو کہلا رہی تھیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اس کا مقابلہ کر رہے تھے. ان کا سوال یہ ہے کہ ہم جب ان لوگوں کے مقابلے کی طرف آتے ہیں تو 2 راستے پاتے ہیں لوگوں کی سیرت میں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا کھل کر فوری مقابلہ نہیں کرنا چاہیے, ان کے سامنے خاموش رہیں, اپنے دوست احباب کو بتا دیں لیکن کھل کر ان کا مقابلہ نہ کریں. اور کچھ لوگ کھل کے مقابلہ کرتے ہیں اور کھل کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں وہ غلط لوگ ہیں. اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ان کو معاشرے میں دشمنیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, کہ جو لوگ ظاہر یہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کی دشمنی میں سر فہرست ہو جاتے ہیں. انہوں نے پوچھا ہمیں کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے کہ ہم کوئی اصول قاطعیت کے ساتھ ایسے نہیں بنا سکتے کہ ہم یہ کہیں یا کھل کے آنا ہے یا آہستہ آہستہ آنا ہے. نہیں, حالات پہ منحصر ہے, واقعات کے اوپر منحصر ہے. سب سے اہم یہ, جس چیز میں تاثیر کا امکان زیادہ ہو اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے یہ دیکھا کہ بھئی یہ کام انجام پا رہا ہے, کام غلط کام ہے, لیکن اگر اچانک بولنے کی کوشش کی تو یہ اپنے غلط کام کو اور جرات کے ساتھ انجام دیں گے. بہتر یہ ہے کہ فی الحال کچھ لوگوں کو سمجھایا جائے, زمینہ فراہم کر لیا جائے اور پھر سب کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے, جیسے کہ معمولاً ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ غلط کام کر رہے ہیں, جب وہ غلط کام کر رہے ہیں آپ ان کے سامنے جا کے کہیں تم سب غلط کر رہے ہو, تم سب جہنمی ہو, نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلی دفعہ ان کے دگنے لوگ وہی کام کر رہے ہوں گے اور آپ کو چڑھا چڑھا کے کہیں گے کہ ہم تو جہنم میں جانا چاہ ہی رہے ہیں, اب آپ جو بولنا ہے بولتے رہیے. یہ عمل کا طریقہ کار نہیں ہوگا. ممکن ہے ان لوگوں کے مقابلے میں عمل کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ وہاں نہ پہنچے, مثال کے طور پر اپنی نارضایتی کا اظہار کیجئے, ان میں سے کچھ معقول لوگوں کو اپنے ساتھ تیار کیجئے کہ بھائی جو کام ہو رہا ہے صحیح نہیں ہو رہا, معقول لوگوں کو سمجھائیے تاکہ نامعقولوں کو وہ لوگ سمجھائیں, اور اس طریقے سے ایک صحیح عمل کو معاشرے کے اندر رائج کیا جا سکے. تو آنے والے انحراف کے مقابلے کرنے کے طریقے کار مختلف ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یعنی قاطعیت کے ساتھ جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم قانون نہیں بنا پائیں گے. مثال کے طور پر اسلام نے شراب کا ایک ساتھ مقابلہ نہیں کیا, بہت تدریجی مقابلہ کیا, لیکن آج اگر کوئی شراب خانہ کھولے, نعوذ باللہ تعالی, مسلمان آدمی بازار میں کھڑے ہو کے شراب بیچنا شروع کرے, میں تدریجی مقابلہ کروں یا ایک طرفہ مقابلہ کروں؟ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ قرآن نے اس زمانے میں شراب کا تدریجی مقابلہ کیا تھا، تین تین مرحلے میں کیا تھا، پہلے یہ کہا شراب کا فائدہ کم ہے نقصان زیادہ ہے، پھر یہ کہا نماز پڑھتے وقت شراب نہ، تو اب میں بھی اس سے جا کے کہوں کہ دیکھو بھائی جو تم شراب بیچ رہے ہو اس کا فائدہ بہت کم ہے اس کا نقصان زیادہ ہے، پھر کل جا کے اس سے کہوں دیکھو تم بیچ رہے ہو بیچ لو لیکن نماز پڑھتے وقت شراب نہیں پینا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، حالات مختلف ہو گئے، طریقہ کار مختلف ہو جائیں گے، ابھی نوعیت مختلف ہے، پہلے قانون آنا تھا تدریجی آ گیا، اب تو قانون آ چکا لوگ قبول کر چکے اس پہ عمل کر رہے ہیں، ایک آدمی انحراف پھیلانا شروع کر رہا ہے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے تاکہ انحراف نہ پھیلائے، اب ایک انحراف ہے جو پھیل چکا ہے اس کا مقابلہ کرنے میں اگر آپ نے یہ کام کیا کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کر کہا یہ سب غلط ہے سب غلط ہے، اگلا نتیجہ یہ ہوگا کل آپ کی آواز سننے کے لیے کوئی آدمی موجود نہیں ہوگا، وہاں یہ طریقہ کار ممکن ہے کہ آپ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر نافذ ہوئیے، عقل مندوں کو اپنے ساتھ ملائیے تاکہ وہ کم عقل لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں، تو ہم کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بنا پائیں گے کہ اکٹھا کیا جائے یا تدریجن کیا جائے، جس میں تاثیر کا امکان زیادہ ہو اس کام کو انجام دیا جائے۔ آج روز ولادت گزرا ہے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا، اس مناسبت سے میں شروع میں عرض کرنا چاہ رہا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، اب آخر میں پہنچ گئے، بس میں چاہوں گا کہ ایک ہدیہ تبریک امام زمانہ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے بآواز بلند درود بھیجے گا محمد و آل محمد، دو جملات میں اگر فرق خلاصہ کرنا چاہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ شخصیت اہل بیت اطہار علیہ السلام یا ان سے متصل لوگوں کی شخصیت کو سمجھنا چاہیں تو بہترین کام آپ یہ کیجئے کہ اپنی طرف سے فضیلتیں اہل بیت کی شخصیتوں میں مت ڈالیے، بلکہ ان فضیلتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے جو اہل بیت نے ایک دوسرے کے لیے بیان کی ہیں، یہ راستہ زیادہ معقول راستہ ہے ان کی شخصیتوں کو پہچاننے کے لیے، لہٰذا اگر آپ کو امیر المومنین کی شخصیت کو پہچاننا ہے تو آپ یہ مت سوچیے مجھے اس میں اچھا کیا نظر آ رہا ہے اور پھر آپ کہیے یہی سب سے اچھا ہے، نہیں ممکن ہے آپ غلطی کر جائیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو وہ درحقیقت اتنا اچھا نہ ہو معاملہ، اس سے اچھی چیزیں موجود ہوں، تو آپ اپنی بصیرت پر اس معاملے میں اکتفا مت کریں۔ اب مثال کے طور پر جب ہم مولا کی شخصیت کو دیکھتے ہیں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو لوگوں نے دو چیزیں تلاش کی مولا کی شخصیت کے اندر، ایک تو یہ تلاش کیا کہ شمشیر زنی کے ماہر تھے، بہت بڑے جری تھے، بہت بہادر تھے اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی دلیل عرض کروں گا ابھی، دوسرا ہم نے یہ کہا کہ بہت اہل جلال تھے، جلال بہت زیادہ تھا، غصہ بہت زیادہ تھا، اب ہم نے تمام فضیلتیں ان دو کے اوپر جمع کر دی کہ شمشیر بہت چلاتے تھے، شمشیر زنی کے ماہر تھے اور بجا ہے بالکل بہت ماہر تھے، سب سے بڑی ان کی مہارت کی دلیل یہ ہے کہ پورا لشکر امام حسین کا ختم ہو چکا تھا، تنہے تنہا نہر فرات تک پہنچ گئے، دیکھیے مہارت شمشیر کی اس سے بڑی کوئی دلیل نہیں ملے گی کہ تمام مقاتل نے کہا کہ مولا شمشیر چلاتے ہوئے تنہے تنہا نہر فرات تک پہنچ گئے، کوئی ایک آدمی دوسرے لشکر کا اتنا جری مقابلہ نہیں کر پائے گا، اتنا کڑا مقابلہ نہیں کر پائے گا کہ سارا لشکر نہر کو روک رہا تھا اور یہ تنہا تھے، ان کے پیچھے کوئی تیر چلانے والا بھی نہیں تھا کہ مثلا یہ کہیں کہ بھئی تیروں کی بوچھاڑ کر دی گئی تو مولا کے لیے راستہ بن گیا، نہیں کوئی تیر پیچھے سے تیر چلانے والا بھی نہیں تھا، کوئی پیچھے سے دفاع کرنے والا نہیں تھا، تنہے تنہا شمشیر چلاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے، تو شمشیر چلانے میں جری تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ آیا یہ وہ سب سے بڑی صفت ہے جو مولا کی شخصیت میں ہے، ہم نے کہا جلال دوسری صفت ہے، سوال یہ آیا یہ سب سے بڑی سب صفت ہے، اگر ہمیں صفت کو ڈھونڈنا ہے تو جا کر اس زیارت کو ڈھونڈیے جو مولا کے نام سے منسوب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے دی ہے، اس زیارت کے اندر ڈھونڈیں کہ ان کی سب سے بڑی اوصاف کیا بیان کی گئی ہیں، تو اگر آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں تو دو تین اوصاف آپ کو سب سے زیادہ بڑی اوصاف نظر آئیں گی، مثلا آپ بار بار دیکھیں گے کہ اپنے بھائی کے لیے وفادار تھے، اوفل جزا خدا ان کو بہترین جزا دے، کیوں انہوں نے اوفا بے بیعت ہی اپنی بیعت پر وفا کی، اپنی بیعت پر وفا کی، اپنی بیعت پر وفا کی کیا مطلب، وفاداری سب سے بڑا عنصر ہے شخصیت مولا عباس علمدار علیہ السلام کے اندر، پر جلال یا شمشیر زنی نہیں ذکر ہوئی وہاں پر، वहां पर जिक्र हुआ है, वफादारी इनकी सबसे बड़ी सिफत है। और मैं इस वफादारी को बहुत ज्यादा दूर तक जिक्र नहीं करना चाहूंगा, ना जिक्र मसाइब मतलूब है इस वक्त। वो ये है कि वफादारी का उन्होंने आगाज इस तरह से किया कि जब शिमर ने अमाननामा भेजा तो उस अमाननामे को अपने और अपने भाइयों के लिए ठुकरा दिया, कहा कि नहीं, हम अपने भाई की बैत, अपने मौला की बैत से बाहर नहीं आएंगे। और उसके बाद इस वफा को इतना बढ़ाया कि जब पानी पीने के लिए, पानी लेने के लिए नहरे फुरात तक पहुंच गए तो चुल्लू में पानी लेकर वफा साबित की और फिर भी पानी नहीं पिया। ये वफा को अपनी इंतहा तक पहुंचा दिया। अब आप तसव्वुर कीजिए, पानी पीना हर इंसान का एक ऐसा हक है जिसका कोई मुमकिन नहीं है, और उस मौके पर जब वो नहरे फरात पर पहुंच गए थे और चुल्लू में पानी था, अगर पानी पी लेते तो बैत की मुखालफत नहीं थी, ये बैत की मुखालफत थोड़ी थी अगर पानी पी लेते, लेकिन इन्होंने बैत की वफादारी को आखिरी मरहले तक पहुंचा दिया। वो ये कि उस मौके पर भी पानी नहीं पिया और कहा कि चूंकि मेरा भाई प्यासा है, मैं पानी नहीं पीऊंगा। तो ये औफा बिबैअते ही, अपनी बैत में वफा की, ये बैत में वफा। उसके बाद एक और बस वहां पर लिखी है, बदला मोहजतहू गायतल जहूद, इन्होंने अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचा दिया, अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचा दिया। अब आप इस जुमले पे अगर तसव्वुर फरमाइए तो फिर आप बड़ी अजीब बारीकियां देखेंगे। अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचाने का मतलब क्या है? वो ये है कि पहले तो ये कि लड़ने वाले से इमाम ने इसरार किया कि तुम ना लड़ो, सुबह से लेकर शाम तक मेरे ख्याल में जिसके दिल में सबसे ज्यादा आरजू रही होगी कि सबसे पहले मैं मैदान में चला जाऊं वो मौला अब्बास होंगे, कि बार बार सोचते होंगे कि अब तो इमाम मुझे जाने देंगे, अब तो जाने देंगे, और जब सब खत्म हो गए तो पहुंचकर कहा कि मौला अब तो मुझे जाने दीजिए, अब कोई बाकी नहीं रहा है। तो ये बदला मोहजा तो अपनी तमाम कोशिशों को सर्व कर दिया, अपने आप को कंट्रोल में रखा, कहा मौला ने मुझे आलम दिया है, अगर मैं शहीद हो गया तो आलमबरदारी कौन करेगा। अपनी कोशिशों को सर्व किया और अपने आप को कंट्रोल रखा, यहां तक कि जब मौला ने इजाजत दी कि जाओ लड़ो, अब क्या हदफ दिया, कहा कि बच्चों के लिए पानी का बंदोबस्त करो, अपनी कोशिशों को सर्व किया, शमशीर दनी उस पाए की कि नहरे फुरात तक पहुंच गए, अपनी कोशिशों को सर्व करके नहरे फुरात तक पहुंच गए, नहरे फुरात से पानी लिया। अब कोशिश क्या सारी सर्व कर रहे थे, किसी तरह पानी खेमे तक पहुंचा दें, सारी कोशिश सर्व कर रहे थे पानी खेमे तक पहुंचा दें। अच्छा, कोशिशें सर्व करने में कहां तक गए, शमशीर दन थे, एक हाथ से मशकीजा को थाम रहे थे, अलम को थाम रहे थे, और दूसरे हाथ से शमशीर चला रहे थे, सीधा हाथ कटा हुआ, कहा मेरी कोशिशों का दायरा महदूद नहीं हुआ है। मुमकिन है कोई ये कहता कि सीधा हाथ तो कलम हो गया था, अब कोशिश करने का चंदन मौरिद बाकी नहीं रहा था, कहीं मेरी कोशिशों का दायरा अभी चल रहा है, तो उल्टे हाथ में मशकीजा को थाम लिया और अपने आप को बचाते हुए मशकीजा लेकर चले। इसको हम कहेंगे अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचा दिया। नहीं, यहां पर मामला खत्म नहीं हुआ, जब दूसरा हाथ भी मुनकते हो गया तो उसके बाद अलम शहीद हुआ और उन्होंने मशकीजा को अपने दांतों में ले लिया। क्यों? अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचा रहे हैं, अपनी कोशिशों को इंतहा तक पहुंचा। मशकीजा लटका हुआ था और जो भी तीर आ रहा था वो मौला अब्बास अपने पहलुओं पर ले रहे थे। कोई मुमकिन है ये कहता कि दो शाने कता होने के बाद अब कोशिश करने का मोरिद नहीं रहा था, लेकिन अब्बास के नतीजे में, अब्बास के जहन में अभी भी मोरिद है, कहा मैं अपनी कोशिश पूरी करूंगा और मैं पानी को पहुंचा के छोड़ूंगा। यहां तक कि जब वो पानी खत्म हुआ उसके बाद जो मौला की कोशिश थी वो ये कि क्या मुमकिन है कटे हुए शानों से दोबारा नहर पर पहुंच के फिर पानी ले आऊं। ये मौला की वसअत कोशिश है, ये कोशिश की वसअत है कि दो शाने कलम होने के बाद भी कोशिश को खत्म नहीं किया और कहा मैं कोशिश को जारी रखूंगा। ये है बजला मोह जाता होगा या तल जहूद, जितनी कोशिश कर सकते थे, जो इंतहाई कोशिश एक इंसान के लिए मुमकिन थी उस इंतहाई कोशिश को हजरत अब्बास ने अंजाम करके दिखाया। और वो ज्यारत इस काबिल है कि आप